नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, चार्ल्स पेट्ज़ोल्ड की पुस्तक कोड द हिडन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का व्याख्यात्मक परिचय है। इसका उद्देश्य किसी प्रोग्रामिंग भाषा का त्वरित पाठ देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि रोजमर्रा के डिजिटल उपकरण भीतर से वास्तव में कैसे काम करते हैं। पुस्तक संचार के पुराने तरीकों जैसे मोर्स कोड और ब्रेल से शुरू होकर बाइनरी संख्याओं, विद्युत परिपथों, लॉजिक गेटों, मेमोरी, सीपीयू और सॉफ्टवेयर अमूर्तन तक क्रमशः बढ़ती है। पेट्ज़ोल्ड की विधि का केंद्र यह है कि हर जटिल व्यवस्था को उससे पहले वाले सरल विचारों से निर्मित किया जाए, इसलिए पाठक को तैयार उत्तर नहीं मिलते, बल्कि वह समझता है कि बिट सूचना क्यों वहन करता है, स्विच तर्क कैसे लागू करते हैं और निर्देशों का क्रम मशीन को उपयोगी काम कैसे कराता है। 2022 का विस्तारित दूसरा संस्करण सीपीयू के निर्माण पर अधिक विस्तार देता है और इंटरैक्टिव ग्राफिक्स वाली सहायक वेबसाइट से सीखने को पूरक बनाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, संचार के कोड से डिजिटल सूचना की बुनियाद। पुस्तक का आरंभ कंप्यूटर से नहीं, मनुष्यों के बीच संदेश भेजने की समस्या से होता है। मोर्स कोड और ब्रेल के माध्यम से पेट्ज़ोल्ड यह स्थापित करते हैं कि सूचना स्वयं किसी विशेष माध्यम पर निर्भर नहीं है। अक्षर, संख्या या निर्देश को संकेतों के तय संयोजनों में बदला जा सकता है। यही विचार बाद में बाइनरी कोड की समझ का आधार बनता है। ब्रेल के उभरे बिंदु और टेलीग्राफ के संकेत यह स्पष्ट करते हैं कि सीमित अवस्थाओं वाला तंत्र भी बहुत बड़ी संदेश श्रेणी व्यक्त कर सकता है। यदि संकेतों की व्यवस्था और व्याख्या पहले से निश्चित हो, यह दृष्टि बिट को केवल शून्य और एक के चिन्ह के रूप में देखने से आगे ले जाती है। बिट एक भौतिक अवस्था जैसे स्विच का खुला या बंद होना और उस अवस्था के अर्थ के बीच समझौता है। पुस्तक अक्षरों के निरूपण से ASCII और फिर यूनिकोड जैसी एन्कोडिंग की जरूरत तक पहुंचती है। इससे पाठक समझता है कि कंप्यूटर के लिए पाठ, संख्या, चित्र और निर्देश अलग अलग जागुई वस्तुएं नहीं है। वे सब अंततः बिटों के अनुक्रम है जिनका अर्थ संदर्भ और नियमों से निकलता है। इस क्रमिक शुरुआत से बाद के हार्डवेयर अध्यायों में कोड और सर्किट का संबंध स्वाभाविक बनता है। दूसरा, बाइनरी अंकगणित और लॉजिक गेटों से निर्णय लेने वाली मशीन। पेट्ज़ोल्ड बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए बाइनरी प्रणाली केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वसनीय परिपथ बनाने का व्यावहारिक उपाय है। विद्युत संकेत को दो स्पष्ट अवस्थाओं में अलग करना कई मध्यवर्ती दशमलव अवस्थाओं को अलग करने की तुलना में सरल और अधिक सहनीय है। पुस्तक पहले स्विचों और रिले के उदाहरणों से बूलियन तक विकसित करती है, फिर एंड और नॉट जैसे लॉजिक गेटों की भूमिका समझाती है। इन गेटों का महत्व यह है कि वे भौतिक विद्युत स्थिति को नियम आधारित निर्णय में बदलते हैं। इनके संयोजन से जोड़ने वाले परिपथ बन सकते हैं और उन्हीं से बड़े अंकगणितीय कार्य संभव होते हैं। पुस्तक बाइनरी संख्याओं, बाइट और हेक्साडेसिमल निरूपण को इसलिए जोड़ती है ताकि पाठक मशीन की आंतरिक गणना और मनुष्यों के लिए सुविधाजनक लेखन के बीच अंतर देख सके। घटाओ, ऋणात्मक संख्याएं और फ्लोटिंग पॉइंट जैसे विषय भी यह दिखाते हैं कि सीमित बिटों में संख्या का प्रतिनिधित्व करते समय डिजाइन के निर्णय करने पड़ते हैं। इस हिस्से की खास उपलब्धि यह है कि गणित और इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग विषय नहीं माना गया है। तर्क के नियम ही सर्किट की संरचना बनाते हैं और सर्किट की संरचना ही गणना को संभव करती है। तीसरा, मेमोरी, फ्लिप फ्लॉप और घड़ी से स्थायी गणना का निर्माण। सिर्फ लॉजिक गेट किसी क्षण में इनपुट देखकर आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को पिछले परिणामों को याद रखना और कामों को सही क्रम में करना भी चाहिए। पुस्तक इस अंतर को फीडबैक और फ्लिप फ्लॉप की अवधारणाओं से समझाती है। फीडबैक के कारण परिपथ अपनी अवस्था बनाए रख सकता है, इसलिए एक बिट को संग्रहित करना संभव होता है। अनेक ऐसे संग्रहण तत्व मिलकर मेमोरी बनाते हैं। पेट्ज़ोल्ड यह भी स्पष्ट करते हैं कि मेमोरी केवल क्षमता का प्रश्न नहीं है, बल्कि पते का प्रश्न भी है। मशीन को यह जानना पड़ता है कि किस स्थान से डेटा लेना है और किस स्थान पर नया डेटा लिखना है। घड़ी का संकेत पूरे तंत्र के लिए अनुशासन का काम करता है। वह परिपथों को चरणों में बदलने देता है ताकि एक क्रिया का परिणाम अगली क्रिया के लिए स्थिर हो सके। इस प्रकार कंप्यूटर निरंतर बदलते विद्युत संकेतों का अव्यवस्थित समूह नहीं रह जाता, बल्कि समयबद्ध अवस्थाओं वाली मशीन बनता है। यह भाग आधुनिक उपकरणों की गति पर कम और उनकी मूल संरचना पर अधिक केंद्रित है। पाठक समझ पाता है कि मेमोरी प्रोसेसर से बाहर रखा कोई निष्क्रिय भंडार नहीं, बल्कि निर्देशों और डेटा के साथ लगातार संवाद करने वाली व्यवस्था है। चौथा, ALU, रजिस्टर और नियंत्रण संकेतों से सीपीयू की परत दर परत रचना। दूसरे संस्करण में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की रचना पर विस्तृत ध्यान पुस्तक की प्रमुख विशेषता है। पेट्ज़ोल्ड अलग अलग घटकों की सूची भर नहीं देते, बल्कि दिखाते हैं कि अंकगणितीय लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, बस और नियंत्रण संकेत मिलकर निर्देश निष्पादित कैसे करते हैं। ALU जोड़ तुलना और तर्क जैसी मूल क्रियाएं करती है। रजिस्टर अत्यंत तेज छोटे संग्रहण स्थान है जिनमें वर्तमान डेटा, पते या बीच के परिणाम रखे जा सकते हैं। बस साझा मार्गों की तरह काम करती है जिनसे बिट विभिन्न घटकों के बीच चलते हैं, लेकिन इन सबको सही समय पर सही काम कराना नियंत्रण संकेतों की जिम्मेदारी है। यही संकेत तय करते हैं कि किस रजिस्टर को पढ़ना है, किस में लिखना है, ALU कौन सी क्रिया करे और अगले निर्देश का पता क्या होगा। जंप, लूप और कॉल की चर्चा यह जोड़ती है कि प्रोग्राम का प्रवाह केवल ऊपर से नीचे चलने वाली सूची नहीं है। शर्तों और दोहराव के कारण मशीन निर्देशों का क्रम बदल सकती है। इस व्याख्या से CPU एक रहस्यमय चिप नहीं रह जाता, वह अत्यंत साधारण क्रियाओं का सावधानी से संयोजित तंत्र दिखता है जिसकी जटिलता घटकों की संख्या से अधिक उनके समन्वय में है। अंत में मशीन भाषा से ऑपरेटिंग सिस्टम और उच्च स्तरीय अमूर्तन तक पुस्तक हार्डवेयर की यात्रा को वही नहीं रोकती जहां CPU निर्देश चला सकता है। वह पूछती है कि ऐसी मशीन उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर तक कैसे पहुंचती है। मशीन भाषा में निर्देश सीधे बिटों या संख्यात्मक कोडों के रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए वह सटीक होते हुए भी मनुष्यों के लिए कठिन और श्रमसाध्य है। असेंबली भाषा नामों और प्रतीकों के जरिए कुछ सुविधा देती है, जबकि उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामर को हार्डवेयर के सूक्ष्म विवरणों से अधिक दूरी प्रदान करती हैं। पिट्ज़ोल्ड इस दूरी को छिपाव नहीं, उपयोगी अमूर्तन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रक्रिया में संसाधनों का प्रबंधक बनता है। वह मेमोरी, इनपुट आउटपुट उपकरणों और प्रोग्रामों के निष्पादन के बीच समन्वय करता है। ग्राफिक्स और उपयोगकर्ता अंतरफलक की चर्चा यह दिखाती है कि स्क्रीन पर दिखने वाला सहज अनुभव भी डेटा निरूपण, मेमोरी और प्रोग्राम निर्देशों की परतों पर टिका है। फिर भी पुस्तक मुख्यतः एकल कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर केंद्रित है। नेटवर्क और वितरित कंप्यूटिंग इसकी केंद्रीय चर्चा नहीं है। यह सीमा पुस्तक की मूल शक्ति से भी जुड़ी है, क्योंकि इसका लक्ष्य आधुनिक डिजिटल जगत की हर शाखा नहीं बल्कि उस आधारभूत मशीन को स्पष्ट करना है जिस पर अनेक सॉफ्टवेयर परतें खड़ी होती है। निष्कर्ष में, कोड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो कंप्यूटर का उपयोग तो करते हैं लेकिन उसके भीतर चलने वाली प्रक्रिया को मूल स्तर पर समझना चाहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी, नए प्रोग्रामर, अनुभवी सॉफ्टवेयर पेशेवर, इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखने वाले पाठक और शिक्षक सभी इससे लाभ ले सकते हैं। इसे त्वरित प्रोग्रामिंग कौशल या किसी आधुनिक फ्रेमवर्क की मार्गदर्शिका समझकर नहीं पढ़ना चाहिए। इसका लाभ वैचारिक है पर व्यावहारिक परिणाम भी रखता है। हार्डवेयर, मेमोरी, डेटा निरूपण और सॉफ्टवेयर की परतों का संबंध समझने पर डीबगिंग, प्रदर्शन, सीमाओं और अमूर्तन के बारे में अधिक सटीक ढंग से सोचना संभव होता है। पुस्तक की गति धीमी और विस्तारपूर्ण है, इसलिए सतही परिचय चाहने वाले पाठक इसे अपेक्षा से अधिक गहन पा सकते हैं। नेटवर्क केंद्रित या वितरित प्रणालियों के आधुनिक प्रश्न भी इसका मुख्य विषय नहीं है। फिर भी इसी केंद्रित दायरे में यह समान श्रेणी की पुस्तकों से अलग है। कई परिचयात्मक पुस्तकें घटकों की परिभाषाएं देती हैं या सीधे कोड लिखना सिखाती है। पिट्ज़ोल्ड इसके बजाय संचार, संकेत, तर्क और गणना के बीच कारणात्मक श्रृंखला बनाते हैं। वे पाठक को मोर्स कोड और स्विचों से उठाकर कार्यशील CPU तथा सॉफ्टवेयर अमूर्तन तक ले जाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, ठोस उपमाएं और परत दर परत निर्माण इस पुस्तक को केवल जानकारी का संग्रह नहीं बल्कि कंप्यूटर को समझने की एक संगठित मानसिक रूपरेखा बनाते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं चार्ल्स पिट्ज़ोल्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।